धार्मिक जीवन। भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विकास में सिंधु सभ्यता के तत्वों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है जितना कि आर्य परंपरा का। सैंधव सभ्यता का एक अत्यंत विशिष्ट पक्ष उसका धर्म था, जिसके अनेक तत्व परवर्ती भारतीय सभ्यता में अंगीकृत हुए। पृष्ठ संख्या 411। जब तक सिंधु लिपि को सर्वमान्य ढंग से नहीं पढ़ लिया जाता है, तब तक सिंधु सभ्यता के धर्म के विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्ण अभाव है। केवल पुरातात्विक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इस धर्म के स्वरूप के संबंध में कुछ अनुमान लगाए हैं। सैंधव सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त होने वाली मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मुहरों, मुद्रांकों तथा मृतभांडों पर खचित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों एवं स्मारकों के अध्ययन के आधार पर सैंधव धर्म के विषय में अनुमान लगाया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों की अपनी संभावनाएं एवं सीमाएं होती हैं। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर धार्मिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में यथेष्ट जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक क्रियापक्ष, दो सिद्धांत पक्ष। धर्म के क्रियापक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक विश्वास आते हैं। सिद्धांत पक्ष में उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश होता है, जिसके ज्ञान के लिए लिखित साक्ष्य अति आवश्यक है। मार्टिमर हिलर ने ठीक ही कहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य धर्म के केवल क्रियापक्ष पर ही यत किंचित प्रकाश डाल सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से धर्म के सैद्धांतिक पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्यों की दूसरी सीमा यह है कि कभी कभी पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किसी पुरावशेष का धार्मिक महत्व था अथवा लौकिक, जैसे सैंधव सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मूर्तियां पूजा के लिए थी अथवा उनका कुछ अन्य उपयोग था। सैंधव सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि वे आर्यों के पहले के आर्येतर भारतीय धर्म पर प्रकाश डालते हैं। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सैंधव धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा सकता है। मातृशक्ति की पूजा, पशुपति के रूप में देव उपासना, लिंग एवं योनि पूजा, पशु एवं नाग उपासना, वृक्ष पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति पूजा आदि सैंधव धर्म के अभिन्न अंग प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त अभिचार एवं परलोकवाद के संबंध में भी पुरातात्विक साक्ष्यों से कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। मातृशक्ति की पूजा। सैंधव सभ्यता के पुरास्थलों से मातृशक्ति की पूजा के विषय में जो साक्ष्य मिले हैं, उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक मृण मूर्तियाँ, दो मोहरों पर अंकित नारी आकृतियाँ और अन्य दृश्य। सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों में स्थित अनेक पुरास्थलों से नारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कमर के चारों तरफ मेखला, गले में कई लड़ी वाले हार एवं विशद केश सज्जा से युक्त मृण मूर्तियाँ प्रायः अर्ध नग्न हैं। कतिपय मृण मूर्तियों को गोद में शिशु को लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। विद्वानों ने इन मृण मूर्तियों को मातृशक्ति की उपासना पृष्ठ संख्या 412 से संबद्ध किया है। प्रश्न यह है कि क्या प्रमाण है कि ये पूजा परक मूर्तियां हैं। इस संदर्भ में अर्नेस्ट मैके ने कुछ साक्ष्यों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। इन मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं। यह संभावना है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई गई होगी, जिसके फलस्वरूप ये निशान पड़ गए हैं। इस संबंध में दक्षिण भारत की कुछ मूर्तियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, जिनके हाथों में तेल पात्र बने हुए मिलते हैं, जिनके जलने के फलस्वरूप ये मूर्तियां काली पड़ गई हैं। परंतु यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत की ये मूर्तियां काफी बात की हैं। मृण मूर्तियों के अतिरिक्त मातृदेवी की उपासना के ऊपर कतिपय अन्य साक्ष्य भी प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा से प्राप्त आयताकार एवं लेख युक्त एक मोहर में एक तरफ सिर के बल खड़ी एक स्त्री का चित्र है, जिसकी योनि से एक पौधा प्रस्फुटित होता हुआ दिखलाया गया है। मोहर की दूसरी ओर एक पुरुष शस्त्र लिए हुए खड़ा है तथा एक हाथ ऊपर उठाए हुए एक स्त्री खड़ी है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना संभवतः बलि द्वारा की जाती थी। केदारनाथ शास्त्री ने इसे मातृ देवी की उपासना का चित्र नहीं माना है, बल्कि कहा है कि यह नर्क का चित्रण है, परंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोहरों पर अंकित अन्य मूर्तियां जिनमें किसी में नारी शिशु को स्तनपान करा रही है, किसी में नारी के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ चित्रित है, किसी में नारी के साथ पशुओं का चित्रांकन है, अनुमानतः मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य हैं। एक मुहर में पीपल के पेड़ की दो शाखाओं के बीच में एक स्त्री का चित्र है और तथा पेड़ के नीचे बकरा लिए हुए एक मानव का चित्रण है। नीचे के भाग में मनुष्यों की एक भीड़ का अंकन है। इस दृश्य की व्याख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। यह संभव है कि इस चित्रण का संबंध मातृ देवी से हो और मातृ देवी की पूजा में बकरे की बलि का विधान प्रचलित रहा हो। भीड़ के चित्रण का तात्पर्य उस धार्मिक समारोह में भाग लेने वाले लोगों से हो। यहाँ पर पीपल के पेड़ का अंकन भी महत्वपूर्ण है। कालांतर में पीपल के पेड़ की उपासना स्वतंत्र रूप धारण कर लेती है। इन उपर्युक्त साक्ष्यों से यह इंगित होता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मातृशक्ति की उपासना जननी एवं शक्ति एवं वनस्पति जगत की उपास्य देवी रूप में प्रचलित थी। कुछ विद्वानों ने मातृ देवी की उपासना के संदर्भ में यह बतलाया है कि इसको राजाश्रय प्राप्त होता तो मातृ देवी की पत्थर की मूर्तियां अवश्य मिलती, परंतु मातृ देवी की सभी मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई मिली हैं। जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर नामक विद्वानों ने यह मत प्रकट किया था कि सैंधव सभ्यता के देव परिवार में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। कुछ अन्य विद्वानों ने, जिनमें केदारनाथ शास्त्री का नाम उल्लेखनीय है, उपर्युक्त मत का खंडन किया है। उनका कथन है पृष्ठ संख्या 413 कि मातृ देवी की उपासना सबसे प्रमुख नहीं थी, बल्कि सैंधव सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थान एक देवता का था। वह देवता रुद्र शिव देवता का आदि रूप नहीं था, बल्कि वह सिंह वाला एक देवता था जो संभवतः पीपल के पेड़ का अधिष्ठाता देव था। केदारनाथ शास्त्री के मत को अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। अधिकतर विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के देवता का संबंध ऐतिहासिक युग के रुद्र शिव के साथ स्वीकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मातृ देवी और देवता दोनों की सैंधव सभ्यता में प्रधानता थी। इनके अतिरिक्त अन्य देव गौर थे। मातृ देवी एवं देवता में आपस में कोई संबंध था अथवा नहीं, यह बतलाना कठिन है। टर्की, सीरिया, ईरान, दक्षिणी बलूचिस्तान की कुली संस्कृति, उत्तरी बलूचिस्तान की जॉब संस्कृति, अफगानिस्तान के मुंडी गॉक से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता के बाहर भी मातृशक्ति की उपासना प्रचलित थी। इस संबंध में पुराविदों की धारणा है कि आद्य ऐतिहासिक काल में मातृशक्ति की उपासना पश्चिम में नील नदी की घाटी से लेकर पूर्व दिशा में सिंधु नदी की घाटी तक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना के प्रचार में भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति का महत्वपूर्ण योगदान था। इस मानव प्रजाति के लोग जैसे जैसे अपने मूल स्थान से आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मातृ देवी की उपासना का प्रसार होता गया। यह निश्चित है कि ऋग्वैदिक काल में मातृ देवी की उपासना विशेष लोकप्रिय नहीं थी। ऋग्वेद में केवल उषा, वाक एवं अदिति आदि देवियों को छोड़कर देवों की प्रधानता मिलती है, अतः मातृ देवी की पूजा को आर्यतर उपासना माना जा सकता है। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में मातृ देवी की पूजा के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सैंधव सभ्यता के अंतर्गत मातृ देवी की उपासना संभवतः सिंध एवं पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्रों से इस प्रकार की मृणमूर्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात के उत्खननों के परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं अवश्य मिली है। ऐसा हो सकता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्नि पूजा तथा यज्ञ का प्रचलन रहा हो, परंतु मातृ देवी की उपासना ने जितना अधिक भारत को प्रभावित किया उतना अधिक किसी और देश को नहीं। भारत में आज भी इस प्रकार की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपति की उपासना। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी के साथ ही साथ एक देवता की भी उपासना होती थी। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सिंधु पुरावशेषों में देखने को मिलता है। इन साक्ष्यों में मोहनजोदड़ो से मैके द्वारा प्राप्त एक मुहर विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में लगभग नग्न बैठे हुए दिखलाया गया है। मणिबंध से भुजा तक उसके दोनों हाथ कंकड़ों से अलंकृत हैं। उसके दाहिने तरफ एक हाथी एवं एक बाघ, पृष्ठ संख्या 414, और बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं। सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े ये दिखलाए गए हैं, जिनमें से एक खंडित अवस्था में है। इस मुहर में देवता के सिंहासन के नीचे हिरण युगल का होना विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्तियों में सिंहासन के नीचे दो हिरणों का अंकन मिलता है। योग दक्षिणा मूर्तियों में शिव हिरण पकड़े हुए दिखलाए गए हैं। देवता के ऊपर सात अक्षरों का एक अभिलेख है, जिसे अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। जॉन मार्शल ने इसको ऐतिहासिक काल के शिव का प्राकरूप कहा है। अधिकांश विद्वानों ने मार्शल के समीकरण से सहमति प्रकट की है कि किंतु कुछ विद्वान मार्शल के इस मत से सहमत नहीं है। केदारनाथ शास्त्री इसे महिष सिर वाला देवता मानते हैं। ऐसी राय चौधरी का कहना है कि देवता के अगल बगल अंकित पशुओं में शिव वाहन ऋषभ की अनुपस्थिति के कारण इसकी पहचान पशुपति शिव से करना संगत नहीं है। मोहनजोदड़ो से इसी प्रकार की अन्य दो मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक मुहर पर देवता एक चौकी पर योगासन मुद्रा में बैठा है, दोनों ओर फैलाए हुए हाथों में कई कंकड़ पहने हुए हैं। यह श्रृंग मुकुट युक्त त्रिमुखी आकृति है, जिसमें एक मध्यवर्ती और दो पार्श्ववर्ती मुख है। सिर के अलंकरण के रूप में पीपल की एक टहनी धारण किए हुए हैं। दूसरी मुहर पर श्रृंग युक्त एक मुखी पुरुष आकृति भूमि पर बैठी हुई अंकित है, जिसके सिर से वनस्पति प्रस्फुटित होती हुई दिखलाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की एक मुहर पर योगासन मुद्रा में बैठी हुई मानवाकृति के अगल बगल पुरुष हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। इन पुरुषों के शरीर के पीछे सर्प के फन दिखलाए गए। सिंधु सभ्यता में देवता की उपासना की लोकप्रियता के ये साक्ष्य सूचक हैं। हड़प्पा के उत्खनन से भी दो मुहरें मिली हैं, जिनमें से एक मुहर में मोहनजोदड़ो के देवता की तरह की एक आकृति है, जो सिर में तीन पंख धारण किए हुए है, जिसके हाथ में कई भुजबंध दिखलाए गए हैं। दूसरे मुहर में भी इसी प्रकार की शिरोवेश भूषा है। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त एक मृतपिंड का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके एक ओर सिंह युक्त खड़ी आकृति बनी है और दूसरी ओर एक आदमी रस्सी में बंधे हुए पशु को ले जाते हुए प्रदर्शित है। सिंह युक्त आकृति संभवतः शिव का प्रतीक है और दूसरी ओर पशु बलि का अंकन है। इन उपर्युक्त साक्ष्यों से देवता की उपासना पर प्रकाश पड़ता है। इनसे ऐसा विदित होता है कि मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। सिंधु सभ्यता के कई पुरास्थलों से देवता से संबंधित अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं। कालांतर में विकसित होने वाले रुद्र शिव की धारणा के विकास में सींग वाले देवता का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। लिंग एवं योनि पूजा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल आदि सिंधु पुरास्थलों से चमकीले पत्थरों पर निर्मित कतिपय ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका पृष्ठ संख्या 415, चित्र 28, मोहनजोदड़ो लिंग एवं योनि सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समीकरण लिंग से किया गया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली, मिट्टी, शंख आदि के बने हुए चक्र भी बड़ी संख्या में मिले हैं। ये चक्र छोटे बड़े दोनों आकार के हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य भाग में एक छेद है। कुछ चक्रों पर पेड़ों एवं पशुओं के साथ साथ नग्न नारी आकृतियों का अंकन भी मिलता है। ये चक्र 27 सेमी से 1.21 मीटर तक व्यास के हैं। कतिपय विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में लिंग एवं योनि की पूजा किया करते थे। कालांतर में विकसित हिंदू धर्म में लिंग एवं योनि की पूजा को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और शिव उपासना के साथ लिंग पूजा का संबंध जुड़ा। ऋग्वेद के अंतः साक्ष्य से ज्ञात होता है कि लिंग पूजा आर्येतर लोगों की देन है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने लिंग पूजक अपने विरोधी शत्रुओं को कृष्ण देवाह कहा है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कतिपय विद्वान उपर्युक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं है। एस जी सांकलिया नामक प्रसिद्ध पुराविद के अनुसार तथाकथित लिंग गलियों एवं नालियों में पड़े हुए मिले थे। यदि उनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरे में स्थापित मिलना चाहिए था। जार्ज एवं डेल्स का भी ऐसा ही मत है। पृष्ठ संख्या 416। पशु पूजा। सिंधु सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर पशुओं का अंकन मिलता है। इनके अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर तथा धातु की बनी हुई पशुओं की कतिपय मूर्तियां मिली हैं। इन पशुओं को पौराणिक, काल्पनिक एवं सामान्य वास्तविक पशु इन दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पौराणिक पशुओं में एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए मिले हैं। बैल, भैंसा, बकरा, मेढ़ा, हाथी, बाघ एवं एक श्रृंगी पशु के अंगों के समाकलन से संश्लिष्ट पशु आकृतियां बनाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में दो जो संश्लिष्ट पशु आकृति है उसके तीन सिर हैं, जिनमें से ऊपर के दो सिर बकरे के हैं और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्रपट्ट में जो एक संयुक्त पशु आकृति अंकित है उसमें संपूर्ण शरीर और सूंड हाथी का है किंतु सिर सिंह युक्त बैल का है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। कतिपय उदाहरणों में अर्ध मानव एवं अर्ध पशु आकृतियां भी मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में अर्ध मानव एवं अर्ध पशु आकृति को एक श्रृंगी बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। जॉन मार्शल का विचार है कि ये संश्लिष्ट प्रतिमाएं निश्चित रूप से पूजा के लिए रही होंगी, जिनकी लोग अपने घरों में पूजा गृह में स्थापना करके पूजा करते रहे होंगे। वास्तविक पशुओं में गल कंबल युक्त डीलदार ककुदमान बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, मेढ़ा, घड़ियाल आदि का अंकन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा आदि से प्राप्त मुहरों पर मिलता है। अनेक पशुओं के आगे प्राय एक पात्र अथवा नाद बना हुआ मिलता है। मार्शल कहते हैं कि कुछ पशुओं जैसे बैल, भैंसा, गैंडा तथा घड़ियाल आदि पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती रही होगी। जॉन मार्शल ने कालांतर में विकसित होने वाली गणेश पूजा एवं वराह अवतार आदि को पशु पूजा का ही विकसित रूप माना है। नाग पूजा उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों से इंगित होता है कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा का भी प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग दिखलाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के मृदभांडों के कतिपय ठीकरों पर भी सर्पों का अंकन मिलता है। लोथल से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखलाया गया है। अर्नेस्ट मैके नामक विद्वान का यह सुझाव है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। यह प्रथा आज भी भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित है। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी नाग पूजा भी करते थे। वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता से संबंधित मुहरों एवं मृदभांडों इत्यादि पर पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, ताड़ के वृक्षों का चित्रण मिलता है। मृदभांडों पर केले के पौधे का भी अंकन उपलब्ध होता है। कुछ मुहरों पर पीपल के पेड़ को बाड से घिरा हुआ दिखलाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पृष्ठ संख्या 417 पीपल के एक वृक्ष के तने से एक श्रृंगी दो पशुओं के सिर निकलते हुए दिखलाए गए हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न देवता को वृक्ष की शाखाओं के मध्य खड़ा अंकित किया गया है। इसके लंबे बाल हैं एवं यह भुजबंध धारण किए हुए है। इसके सन्निकट ही एक उपासक विनीत भाव से बैठा है। उसके पीछे एक अन्य आकृति है जिसका मुख पुरुष का है। शरीर का कुछ भाग बकरे का तथा शेष बैल का है। इसके बाद घुटनों तक वस्त्र पहने हुए सात नारियां एक पंक्ति में सिर पर पीपल की टहनियां लगाए हुए हैं। मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर दो व्यक्ति हाथ में एक एक वृक्ष धारण किए हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रांक में पीपल की एक टहनी को झुका हुआ दिखलाया गया है। टहनी के गोल घेरे में एक देवता को जांघिया की तरह का वस्त्र पहने हुए दिखलाया गया है। मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुहर में एक श्रृंगी दो पशुओं को पीपल के वृक्ष की शाखा से प्रस्फुटित होते हुए दिखलाया गया है। मृत भांडों पर पीपल की पंक्तियों का चित्रण प्रायः मिलता है। इन साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कतिपय वृक्षों को पवित्र मानते थे और इनकी पूजा करते थे। कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि पीपल के पेड़ में सिंधु सभ्यता का मुख्य देवता निवास करता था, फलतः इसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कालांतर में पीपल के पेड़ की उपासना एक स्वतंत्र रूप धारण कर लेती है। आज भी भारत में पीपल, वट, केला, तुलसी आदि की पूजा की जाती है। जल की पवित्रता। विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं में जल का बड़ा महत्व था। भारत में नदियों को अत्यंत प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता रहा है, उनकी पूजा की जाती रही है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक विशाल स्नान कुंड के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। यह स्नानागार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.750 मीटर गहरा था। इसका तल पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। इसमें जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी। समीप के एक कमरे में ईंटों की दोहरी पंक्ति से निर्मित एक कुआं मिला है। संभवतः यह कुआं स्नानागार के लिए जल की पूर्ति का मुख्य साधन था। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित नाली से यहाँ के पानी का निकास होता था। स्नानागार के उत्तर में दो पंक्तियों में छोटे छोटे 8 स्नान कक्ष भी मिले हैं, जहाँ पर लोग पूजा करने के पहले स्नान करके अपने कपड़े बदलते रहे होंगे। स्नानाकुंड के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सिंधु सभ्यता के लोग जल की पूजा किया करते थे। परंतु सिर्फ इस साक्ष्य के आधार पर जॉन मार्सल ने यह अनुमान लगाया था कि सिंधु सभ्यता के लोग जल पूजा और संभवतः सरित पूजा किया करते थे। योग। प्राचीन भारत में योग की परंपरा का धार्मिक महत्व रहा है। योग की वह परंपरा कहाँ से आई, इस प्रश्न पर विचार करते हुए विद्वानों ने यह कहा कि ऋग्वेद में योग की मुद्राओं का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। अतः योग की पृष्ठ संख्या 418 परंपरा को आर्यतर लोगों की देन माना जा सकता है। इस संबंध में सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में एक पुरुष की आकृति पद्मासन मुद्रा में है। पद्मासन योग की एक मुद्रा है। योग की एक दूसरी मुद्रा का अंकन मोहनजोदड़ो से उपलब्ध पत्थर की एक मूर्ति में मिलता है, जिसमें आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हैं। इस मुद्रा को शांभवी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है, जिसका वर्णन परवर्ती प्राचीन भारतीय साहित्य में इस प्रकार मिलता है। अंतर्लक्षम बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जितः। कहने का तात्पर्य यह है कि योग के क्रियापक्ष की कुछ मुद्राओं का विशेष का पूर्व रूप हमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त होता। मूर्ति पूजा। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से उत्खनन से अभी तक किसी देवालय के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा के टीलों के उत्खनन से इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के 2-3 भवनों को विलर देवालय मानने के पक्ष में है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर जहां कुषाण काल में एक स्तूप का निर्माण किया गया था, देवालय माना जा सकता है। कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि यहाँ पर काष्ठ निर्मित एक देवालय रहा होगा जो नष्ट हो गया। विशाल स्नानकुंड के उत्तर पूर्व में एक अन्य महत्वपूर्ण तथा 83 मीटर लंबे एवं 24 मीटर चौड़े एक विशाल भवन की रूपरेखा मिली है। इसमें 10 मीटर वर्ग के आकार का एक खुला हुआ आंगन था, जिसके साथ ही 3 बरामदे थे। पक्की ईंटों से बने हुए फर्श वाले छोटे आकार के कतिपय कमरे इस भवन में थे। E.H. मैके नामक विद्वान का अनुमान है कि यह भवन संभवतः पुरोहित के आवास के लिए प्रयुक्त होता रहा होगा। चित्र 29, कालीबंगा, अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाएं, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पृष्ठ संख्या 419। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण में 750 वर्ग मीटर के आकार के एक विशाल कक्ष हॉल की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। इसमें 5-5 स्तंभों की 4 पंक्तियां थी। इस कक्ष के धार्मिक समारोह आदि के अवसर पर उपयोग की संभावना प्रकट की गई है। कुछ विद्वानों का ऐसा सुझाव है कि सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं बनाए गए थे, देवी देवताओं की पूजा खुले स्थानों पर की जाती थी। धूप दीप पुष्प पशु बलि और संभवतः यदा कदा मानव बलि द्वारा पूजा की जाती थी। राजस्थान में स्थित कालीबंगा और गुजरात में विद्यमान लोथल नामक पुरास्थलों के उत्खनन से अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं उपलब्ध हुई हैं। कालीबंगा के दुर्ग पर जो अग्निकुंड मिले हैं, उनमें पशुओं की हड्डियां, सींग एवं राख मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्निकुंड तथा यज्ञ का प्रचलन था। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैंधव पुरास्थलों से उपलब्ध मातृदेवी की मूर्तियां हैं। ऋग्वेद में प्रतिमा पूजा का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद की एक ऋचा, जिसका अर्थ है कि कौन मेरे इस इंद्र को 10 गायों में खरीद सकता है, के आधार पर कतिपय विद्वानों ने इंद्र की प्रतिमा की पूजा का अनुमान लगाया है। यहाँ पर इंद्र का अर्थ इंद्र की मूर्ति से हो सकता है, परंतु 10 गायों से इंद्र को खरीदने की बात का तात्पर्य 10 गायों से इंद्र की कृपा प्राप्त करने से ही हो सकता है। अतः ऋग्वैदिक काल में इंद्र की प्रतिमा बनती थी अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। प्राचीन भारत में कालांतर में विकसित होने वाली मूर्ति पूजा में भी सैंधव सभ्यता का प्रभाव माना जा सकता है। अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु सभ्यता के लोगों की परलोक विषयक मान्यताओं के विषय में लिपि के पाठोद्धार के अभाव में निश्चित जानकारी नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि मृतक के अंतिम संस्कार के प्रति वे पूर्ण सजग थे। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, 1 पूर्ण समाधिकरण, 2 आंशिक समाधिकरण और 3 दाह संस्कार। कब्रिस्तान समाधि क्षेत्र सिंधु सभ्यता के नगरों में बस्ती के बाहर होते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रूपनगर, रोपण, लोथल, कालीबंगा, सूरकोटदा तथा सुतकागेन डोर के अतिरिक्त चंडीगढ़, तरखाने, वालाडेरा राजस्थान और रंडल हडवा गुजरात से अभी तक अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। जमीन में गड्ढा खोदकर कब्र बनाई जाती थी। यदा कदा कब्र के किनारों पर कच्ची ईंटें लगाई जाती थी। हड़प्पा के उत्खनन से अभी तक एकमात्र ऐसी एक समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। यह संभवतः किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र थी। शवों का दिक् स्थान उत्तर दक्षिण होता था, अर्थात सिर उत्तर की ओर और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कब्र में दफनाया, पृष्ठ संख्या 420 जाता था। चित्र 30, हड़प्पा ताबूत युक्त मानव समाधि, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके कुछ अपवाद भी प्राप्त हुए हैं। रोपण में एक मानव कंकाल पश्चिम पूर्व लोथल में पूर्व पश्चिम और कालीबंगा में दक्षिण उत्तर दफनाए हुए मिले हैं। अधिकांशतः एक कब्र में एक ही मुर्दे को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में एक और लोथल से 3 युग्म समाधियां मिली हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 कंकाल। चित्र 31, लोथल युग्म समाधि, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पृष्ठ संख्या 421, साथ साथ दफनाए हुए मिले हैं। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, दीप तथा दर्पण आदि अंत्येष्टि सामग्रियां रखी हुई मिली हैं। रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। लोथल में एक कंकाल के साथ बकरे के सींग और हड्डियां रखी हुई मिली हैं। ऐसी संभावना है कि मृतात्मा को ये वस्तुएं उपभोग के लिए समर्पित की गई रही होंगी। मोहनजोदड़ो से कतिपय कलश शवाधान मिले हैं, जिनमें पशुओं, मछलियों एवं चिड़ियों की कुछ हड्डियां, आभूषण, राख, कोयला तथा मृत भांडों के टुकड़े आदि भरे हुए मिले हैं। जॉन मार्शल तथा मैके नामक विद्वान इन्हें प्रतीकात्मक समाधियां मानते हैं। इन विद्वानों का मत है कि शव को जलाने के बाद बची खुची हड्डियों तथा राख को मृत भांडों में भरकर दफना दिया जाता था। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वानों के अनुसार कलश शवाधानों में मानव अस्थियां नहीं मिली हैं, इसलिए इनको समाधियां नहीं बल्कि निकास नलियों के शोकता गड्ढे कहा जा सकता है। मोहनजोदड़ो के 42 मानव कंकालों का उल्लेख किया जा सकता है, जो मकानों एवं सार्वजनिक मार्गों पर अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए हुए मिले थे। इनमें से कुछ मानव कंकालों में किसी धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। मार्टिमर व्हीलर ने यह मत प्रकट किया था कि किसी बर्बर बाह्य आक्रमण के शिकार हुए लोगों के ये कंकाल थे। इस मत से कतिपय विद्वान असहमत हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध पुराविद जॉर्ज एफ डेल्स ने सर्वप्रथम व्हीलर की बाह्य आक्रमण की मान्यता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बतलाया कि मोहनजोदड़ो के जिन मानव कंकालों का व्हीलर ने उल्लेख किया था वे सिंधु सभ्यता के परवर्ती चरण लेट फेज से संबंधित है, लेकिन अंतिम चरण से कदापि नहीं है। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के नृतत्व विज्ञान के विद्वान के यू आर केनेडी ने मोहनजोदड़ो से मार्शल, मैके तथा डेल्स द्वारा प्राप्त 42 मानव कंकालों का अध्ययन किया। इनमें से 37 कंकाल भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण कलकत्ता तथा 5 पाकिस्तान के कराची में हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो से अभी तक कुल 42 मानव कंकाल मिल चुके हैं और सभी नगर क्षेत्र के अंदर मकानों तथा सार्वजनिक मार्गों पर अस्त व्यस्त दशा में पड़े हुए मिले हैं। अगर मोहनजोदड़ो में समाधि नगर के बाहर रहा होगा तो इसकी खोज होना अभी शेष है। केवीआर केनेडी ने मोहनजोदड़ो के उपर्युक्त 42 मानव कंकालों का अध्ययन करके बतलाया है कि इनमें से केवल एक व्यक्ति की मृत्यु चोट लगने से हुई प्रतीत होती है, शेष की मृत्यु मलेरिया जैसी किसी महामारी से हुई थी। ऐसी स्थिति में बर्बर आक्रमण की बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लोथल के मानव कंकालों का अध्ययन करने पश्चात भौतिक नृतत्वविदों ने यह मत प्रकट किया है कि सिंधु सभ्यता के इन पृष्ठ संख्या 422 नगरों में जनसंख्या में आद्य ऑस्ट्रेलियाड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन, आद्य नार्दिक, प्रोटो नार्दिक तथा मंगोल मानव प्रजातियों का अस्तित्व था। इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इनमें से किस मानव प्रजाति को इस सभ्यता की जन्मदात्री माना जाए, यह निश्चित करना बहुत कठिन है। कालक्रम, सिंधु सभ्यता का कालानुक्रम भारतीय पुरातत्व का एक विवादग्रस्त विषय रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक ओर जहां दजला, फरात एवं नील नदी की घाटियों में सभ्यता का एक अविच्छिन्न प्रवाह आद्य ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक दिखलाई देता है, वहीं दूसरी ओर सैंधव सभ्यता के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का सैंधव सभ्यता के विकास में क्या योगदान था, यह विवादग्रस्त है, क्योंकि इनमें और सैंधव सभ्यता में अनेक अंतर है। सैंधव लिपि इसके प्रौढ़ चरण के साथ ही समाप्त हो गई। तत्पश्चात मौर्य काल में लेखन कला के अस्तित्व के निर्विवाद साक्ष्य मिलते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की बहुत क्षीण संभावना है कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव एवं विकास में सैंधव लिपि का योगदान था। जब सैंधव सभ्यता भारत के ऐतिहासिक युग से कटी हुई है, तब मानदंडों में उसका तिथि निर्धारण कैसे किया जा सकता है, यह समस्या जॉन मार्शल के सामने भी थी और कुछ सीमा तक आज भी है। सिंधु सभ्यता तत्कालीन जिन अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आई, यदि उनकी तिथि ज्ञात हो तो इसकी तिथि के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निरपेक्ष तिथि क्रम के आधार पर सिंधु सभ्यता के कालानुक्रम के संबंध में निश्चय के साथ कुछ कहा जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य और सुमेरियन तिथियों के परिप्रेक्ष्य में जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सन 1931 में सिंधु सभ्यता की संपूर्ण अवधि को 500 वर्ष स्वीकार करते हुए सिंधु सभ्यता का काल विस्तार लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण को 2500 ईसा पूर्व में निर्धारित करते हुए सिंधु सभ्यता के प्रारंभ की तिथि 2800 ईसा पूर्व प्रस्तावित किया था। माधव स्वरूप वत्स ने मोहनजोदड़ो नगर का अंत 2700 ईसा पूर्व में मानते हुए हड़प्पा नगर में इस सभ्यता के प्रारंभ की तिथि 3500 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। जॉन मार्शल का उपर्युक्त मत अब मान्य नहीं है। वास्तव में मार्शल ने जिस समय का कालानुक्रम प्रस्तावित किया था उस समय सुमेरिया के शासक सार्गोन की तिथि 2800 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानी जाती थी, किंतु अब सार्गोन का शासक काल 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2317 से 2316 ईसा पूर्व में स्वीकार किया जाता है। पृष्ठ संख्या 423। सन 1937 में प्रसिद्ध ब्रिटिश पुराविद सीजे गैट ने पश्चिमी एशिया के विभिन्न पुरास्थलों विशेषकर उर से प्राप्त सिंधु उद्भव की मोहरों की सर्वप्रथम गंभीर विवेचना किया था। अपने इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम लगभग 2350 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। सन 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन करने के पश्चात उन सभी साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जिनके आधार पर सिंधु सभ्यता का कालानुक्रम समय समय पर निर्धारित किया गया था। व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से प्राप्त सिंधु उद्भव की 12 मोहरों को मुख्य आधार बनाया था। ये मोहरे उर, किश, लगश, उम्मा, टेल, अस्मर, तेपे, गावरा, हमा आदि से प्राप्त हुई थी। इन्हें तीन उपकालों में विभाजित किया गया था, एक प्राक सार्गोन काल, दो सार्गोन काल, तीन इसिन लार्सा काल। प्राक सार्गोन काल के स्तरों से दो मुहरे मिली हैं। सार्गोन काल की 7 मुहरे हैं और इसिन लार्सा काल 1930 से 1770 ईसा पूर्व से 2 मुहरे प्राप्त हुई हैं। केसाइट स्तरों से भी 1 मुहर उपलब्ध हुई है। व्हीलर ने इन मुहरों के वितरण के आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। व्हीलर ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ सिंधु सभ्यता का विशेष संपर्क सार्गोन काल में था, क्योंकि इस काल के स्तरों से सर्वाधिक संख्या में मुहरे मिली थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लगभग 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुका था। यह व्यापारिक संबंध कब तक चलता रहा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सक्षम साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल यह एक ही मुहर ऐसी मिली है जिसे लगभग 1500 ईसा पूर्व में रखा जा सकता है। अपने मत के समर्थन में व्हीलर ने साहित्यिक साक्ष्यों विशेषकर ऋग्वेद के अंत साक्ष्यों का बुद्धिमत्ता से उपयोग किया था। ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में उल्लेख मिलता है कि आर्यों को दुर्ग रक्षित आर्येतर लोगों से युद्ध करना पड़ा था। ऐसी संभावना प्रकट की गई है कि ये सिंधु सभ्यता के ही लोग थे जिनके नगरों को ऋग्वेद में चारों ओर से रक्षा प्राचीरों से परिवेष्टित बतलाया गया है। व्हीलर ने हड़प्पा के अंतिम चरण को आर्य भाषा भाषी लोगों के आगमन से जोड़ा था। दुर्ग ध्वस्त करने में सहायता प्रदान करने वाले अपने देवता इंद्र को आर्यों ने पुरंदर की उपाधि प्रदान किया है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से स्त्री पुरुष तथा बच्चों के कंकाल घरों एवं गलियों में अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए हुए मिले थे। ऐसा अनुमान किया गया है कि आक्रमण के समय भागते हुए लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार व्हीलर के अनुसार इस नर संहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया जा सकता है। इस तरह भारत में ऋग्वेदिक आर्यों के आगमन की तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता के अंत की तिथि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 424। इससे व्हीलर के 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मत की पुष्टि होती है। सिंधु सभ्यता की तिथि क्रम के संबंध यही मत सबसे अधिक अभी भी मान्य है। अनेक विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के 1000 वर्ष से अधिक अति विस्तृत काल विस्तार एवं संख्या शंका व्यक्त की है। सन 1956 में वाल्टर फेयर सर्विस ने क्वेटा के अपने उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह मत प्रकट किया कि केवल निक्षेपों की गहराई से पुरास्थलों के काल विस्तार का सही आभास नहीं मिलता है। सिंध के बहुत से पुरास्थलों के सैंधव स्तरों का परीक्षण करने पर फेयर सर्विस को यह ज्ञात हुआ कि कोटजी डाबाकोट और आमरी आदि पुरास्थलों पर सैंधव बस्तियों का काल विस्तार बहुत संक्षिप्त था। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का काल 1000 वर्ष रहा हो और उसमें कोई परिवर्तन न हुआ हो ऐसा संभव नहीं है। फेयर सर्विस से सैंधव सभ्यता की कालावधि 500 वर्ष स्वीकार करते हुए इसका कालानुक्रम 2000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। आर एल राय ने भी सैंधव सभ्यता की लंबी कालावधि पर शंका प्रकट किया है। रायक्स का कथन है कि यह कैसे मान लिया जाए कि मोहनजोदड़ो के इस शहर से के 1000 वर्ष से अधिक समय तक आबाद रहने के बावजूद केवल 10 मीटर निक्षेप एकत्र हुआ, जबकि बाद के 3500 वर्ष में अतिरिक्त गाद एकत्र ही नहीं हुई। रायक्स के अनुसार यह भी संभव नहीं है कि कोई सभ्यता 1000 वर्ष तक जीवित रहे और इसमें कोई परिवर्तन न हो। मिश्र में जहाँ परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी, वहाँ भी कुछ समय बाद परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यदि यह मान लिया जाए कि यह सभ्यता केवल 400-500 वर्ष तक ही जीवित रही तो बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। सन 1964 में डीपी अग्रवाल ने अपने एक गवेषणात्मक निबंध में कोटदीजी, कालीबंगा और लोथल सहित अन्य सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त लगभग 2 दर्जन रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में सैंधव सभ्यता के कालानुक्रम का नए सिरे से आकलन करने का प्रयास किया। इस आधार पर अग्रवाल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सैंधव सभ्यता 2300 से 1750 ईस्वी तक अस्तित्व में रही होगी। अग्रवाल ने लिखा है कि पश्चिमी एशियाई साक्ष्यों के आलोक में सार्गोन युग से पूर्व सैंधव सभ्यता की तिथि अनिश्चित है और 1750 ईसा पूर्व के बाद सैंधव सभ्यता के जीवित रहने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। एक अन्य निबंध में डीपी अग्रवाल ने सिंध और पंजाब के केंद्रीय क्षेत्र में सैंधव सभ्यता का कालानुक्रम 2300 से 2000 ईसा पूर्व और राजस्थान तथा गुजरात के परिधीय क्षेत्र में 2000 से 1700 ईसा पूर्व प्रस्तावित किया है। संशोधित रेडियो कार्बन तिथियों के अनुसार कालक्रम 2500 से 2000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा तथा बाड़ा से रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो से 7 रेडियो कार्बन तिथियां मिली, पृष्ठ संख्या 425 है, जिनमें से एक तिथि मार्शल के द्वारा एकत्र किए गए अजले गेहूं के दानों पर आधारित है। यह तिथि 1755 से प्लस माइनस 155 ईसा पूर्व है। इस तिथि का निर्धारण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने किया है। नमूने के दूषित होने के कारण डीपी अग्रवाल इस तिथि को विश्वसनीय नहीं मानते हैं। जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा मोहनजोदड़ो से एकत्र किए गए नमूनों से 6 रेडियो कार्बन तिथियां ज्ञात है, जो 2155 प्लस माइनस 65 से 1865 प्लस माइनस 65 ईसा पूर्व के बीच में है। ये सभी नमूने सैंधव सभ्यता के अंतिम चरण के स्तरों से संबंधित माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सैंधव सभ्यता का प्रारंभ लगभग 2500 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। 1865 ईसा पूर्व की रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि उक्त समय में सैंधव सभ्यता मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल पर अंतिम घड़ियां गिन रही थी। कोटदीजी में प्राक सैंधव सभ्यता की रेडियो कार्बन तिथियां 2600 प्लस माइनस 145 ईसा पूर्व से 2100 प्लस माइनस 140 ईसा पूर्व के बीच में है। बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के आधार पर कोटदीजी में सैंधव सभ्यता के प्रारंभ की तिथि 2500 ईसा पूर्व मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्राक सैंधव संस्कृति एवं सैंधव सभ्यता के बीच समय का विशेष अंतराल नहीं था। कालीबंगा से प्राप्त 8 रेडियो कार्बन तिथियों में से प्राचीनतम तिथि 2200 30 प्लस माइनस 105 ईसा पूर्व और नवीनतम तिथि 1665 प्लस माइनस 110 ईसा पूर्व है। अग्रवाल ने नवीनतम तिथि को संदेह से परे नहीं माना है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कालीबंगा में सैंधव सभ्यता 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी। लोथल से 8 रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। इनमें एक तिथि का संबंध लोथल के बद धरातल से है। यह तिथि 1800 प्लस माइनस 140 ईसा पूर्व है। शेष तिथियों में प्राचीनतम 2080 प्लस माइनस 135 ईसा पूर्व और नवीनतम 1865 प्लस माइनस 110 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन तिथियों के साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सैंधव सभ्यता की कालावधि 2200 से 1700 ईसा पूर्व प्रस्तावित की गई है। एस आर राव ने लोथल से प्राप्त पश्चिमी एशियाई पुरानिधियों आदि के आधार पर यहाँ पर सैंधव सभ्यता की प्रारंभ की तिथि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर 2450 ईसा पूर्व सुझाई है और अंत 1900 ईसा पूर्व के लगभग माना है। रोजदी से दो रेडियो कार्बन तिथियां मिली है, प्राचीनतम 1970 प्लस माइनस 115 ईसा पूर्व और नवीनतम 1745 प्लस माइनस 105 ईसा पूर्व है। इनके आधार पर यहां सैंधव सभ्यता 2100 से 1700 ईसा पूर्व तक थी। सुरकोटदा से अभी तक 8 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं। सुरकोटदा में सैंधव सभ्यता की कालावधि 2100 से 1890 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। वाडा हरियाणा ने 3 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्य हैं। प्रथम तिथि 1890 प्लस माइनस 25 ईसा पूर्व, द्वितीय 1845 प्लस माइनस 155 ईसा पूर्व और तीसरी 1645 प्लस माइनस 90 ईसा पूर्व है। यहाँ सैंधव सभ्यता का काल विस्तार 1900 से 1700 ईसा पूर्व माना जा सकता है। पृष्ठ संख्या 426। पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि हड़प्पा सभ्यता और सुमेरी सभ्यता के बीच 2300 ईसा पूर्व में व्यापारिक संपर्क निश्चित रूप से था, तब तक सैंधव सभ्यता को 2300 ईसा पूर्व से प्राचीन माना जा सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निचले स्तरों से जब तक रेडियो कार्बन तिथियां नहीं मिल जाती, तब तक सैंधव सभ्यता की प्राचीनता का प्रश्न अनुत्तरित ही बना रहेगा, क्योंकि इन्हीं पुरास्थलों में संभवतः सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी स्थिति में व्हीलर तथा प्रस्तावित 2500 से 1500 ईसा पूर्व की कालावधि को स्वीकार किया जा सकता है।